उसने काटा, ये मर गया। और उस लाश को नीचे रख दिया, मैया को हायर करती 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 भी थी, विलाप करने लगी, एक ही हमारी अंगी काल लगी, बस रोने लग गई। जब उसका रोना कुछ कम हुआ तो वो कह रहा है जैसे देखो मैया कि सांप ने अकारण ही इसको काटा, इस पर भी नहीं रखा, इसको कुछ छेड़ा भी नहीं, फिर भी काट दिया। तुम आदेश दे दो इस विषाक्त जीव को जो खल है इसको मैं मार दूँ, मैं इसे बोटी बोटी काट करके और आज में भी जा। भैया ने आंखों के आंसू पूछते हुए कहा बेटा ये तो बतलाओ इस सब को जला देने से, मार डालने से और जला देने से हमारा बेटा चला आएगा तो नहीं? भैया ये तो नहीं आएगा, तो उसको छोड़ो, उसको मारो मत, वो प्राणी है, काट दिया तो काट, उसका स्वभाव है ऐसा, काट दिया। नहीं भैया, तुम्हारे बेटे को आज काटा है, कल दूसरे को काटेगा, तीसरे को काटेगा, चौथे को काटेगा, बिना कारण ही ये डसने वाले हैं, इन खलों को मार डालना चाहिए, दीमक है, चूहे हैं, सर्प है,
खटमल
और खटमल है, ये बिना किसी कारण के लोगों का अनिष्ट करने वाले ये जानवर हैं, और आदमियों को देख करके भागते हैं, बड़े डरते हैं आदमियों से, तो इसलिए ये खलों को विनाश कर देना है, नहीं तो दूसरे को कल काटेगा। अजय मैया बेटा तुम जैसे इसको छोड़ो, हमारा बेटा इसे नहीं आएगा, आज जिसको काटना है तो आज तक किसी को क्यों नहीं काटा जो आज काट दिया, तुम इसको छोड़ो। तो उसने कहा जी आप कहने से भी मैं नहीं मानता, इस बदमाश को दुष्ट को मैं अभी काटता काट करके और जला देता हूँ। जब प्रस्तुत होने लगा तो इतने में सांप ने कहा भैया हमको बेकार का क्यों मार रहा है, मैंने थोड़े इसको काटा, काल ने हमें प्रेरित किया, इसलिए काल के कहने से हमने। इतने में काल आ गए, अरे तू हमको क्यों दोष देता है, मैंने क्या किया, मेरा इसमें कुछ दोष नहीं है। सांप कहता है ये
काल
ना, ना, काल वो नहीं, वो सफेरा बैलिया, बैलिया कहते देखो काल ने किया या तुमने किया, मैं ये नहीं जानता तुमने क्यों काटा, काल किसी के कहने से तुम किसी को मार डालेगा, काल ने तुमको आदेश दिया तुमने काटा, इसलिए वो दोषी है तुम भी दोषी, इसलिए तुमको भी नहीं हम छोड़े, इसलिए तुमको तो हम दो। अजी क्यों हमको तंग करता है, हम अपने आप नहीं काटा। इतने में काल आ गया, वो कहता है सांप को जी हमको क्यों दोष देता है, अरे हमने थोड़े किया, काल माने क्या, काल कहते हैं किसको, अपने किए हुए करने को फल को काल कहते हैं, ये काल होता है, ये सब कुछ जो होता है ये जन्म होता है काल से, दुख भोगते हैं काल से, मरते हैं काल से, बिना काल का कोई भी चीज नहीं होता है, काल से हम वृद्ध होते हैं अर्थात अपने कर्मों से, कोई 50 वर्ष में बूढ़ा हो जाता है, कोई 100 वर्ष में एकदम टाइट रहता है, ऐसा क्यों होता है, इसमें दूसरा कोई भी दोषी नहीं। इसलिए इसने अर्थात उस लड़के ने इसको मारा था, और मारने के वजह से वही मारा हुआ फल उस पर लगा, उसका काल वो बना, आज वही ये सर्प काल से प्रेरित, कर्म से प्रेरित होकर आज इसको काट रहा है। इसलिए मैं दोषी नहीं, दोषी है इसका कर्म ही, ये खुद ही उसके लिए दोषी है, अपने मृत्यु का कारण है। इसने महाभारत युद्ध में जो लोग मरे हैं आप उसके लिए कारण नहीं है, उसके लिए कारण कौन है, वो व्यक्ति ही उसके लिए दोषी है। इसलिए हमारे ऊपर में यदि कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तो उसको ये समझना चाहिए हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कर्म हैं, इसलिए वो भुगतने पड़ेंगे। तत्तेन कंपम सुषुम्नाणु भुंजान एव आत्मकृतम विपाक, आत्मकृतम माने अपने किए हुए कर्म ही अभी हमारे पास में सुख या दुख के रूप में आ रहे हैं, उसको हंसते हुए झोलो अथवा रोते हुए झोले झेलना पड़ेगा। और उसी में भक्तों के लिए बतलाया, जब उनका कर्म नहीं है कुछ, भक्त लोग तो कोई कर्म नहीं करते, तो उसके लिए फिर विचार करना पड़ेगा। एवात्म कृतम विपापम विद्वान बहुवि विद्वन नमस्ते तत्ते अनुकंपा तत्ते अनुकंपा। अर्थात ते वो प्रभु जो है ना, उनकी अनुकंपा से ये दुख तुम में आ रहे हैं, तुम ऐसे ही इतना तुम धुरंधर है कि तुम में दीनता नहीं आती, तुम अकड़ करके चलता है, अक्खड़ है, किसी की बात नहीं सुनता, बड़ा अभिमानी है, क्रोधी है, तू सुनेगा किसी, नम्र नहीं होगा। इसलिए भगवान तुम्हारी नम्रता लाने के लिए ये सब देंगे। उस समय में ऐसा दुख देंगे जो डॉक्टर से ठीक नहीं होगा। अरे और की तो बात, साधारण एक वायु का रोग यदि गठिया हो गई है तो डॉक्टर का बाप भी कुछ नहीं करता, साधारण साधारण रोग है। जब अच्छा होना होगा, जब उसका कर्म ऐसा होगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो वो उसको लेकर के ही जाएगा। ऐसी कितनी ही बीमारियां हैं ये डॉक्टरों को लग जाती है। एक डॉक्टर था कलकत्ते में, हमने देखा वो 1,000 रुपया फी लेकर के किसी के घर में जाता था, और उस डॉक्टर को देखा जो वो चल रहे, उसको गठिया रोग सब चारों तरफ,
हाँ वो
उसी में खर्च हो रहा है दूसरे में, और वो 1,000 रुपया फीस लेता है दूसरों के लिए। तो इसको सहना होता है, औषधि से जो होता है उसको ठीक करेंगे, ठीक है ये, किंतु भगवान ने नम्रता लाने के लिए जो दिया, इसका क्या इलाज है, कुछ होगा नहीं तो तुम तो बड़ा उदंड रहेगा, अपने समान किसी को मानेगा नहीं। इसलिए ये भगवान की कृपा से मिलते हैं, और नहीं तो कर्मों को दूसरा। इसलिए दोनों दृष्टियों में कोई दूसरा हमको दुख देने के लिए उत्तरदायी तो नहीं है, उसका दायी हम ही लोग। इसलिए हमने जो किया है उसके अनुसार में भोगते हुए, जिसके अनुसार में कर्मों से हमारा शरीर बना है, इसी को प्रारब्ध कर्म कहते हैं, इसको तो सहना ही होगा, दूसरे इसके लिए दायी नहीं। इसलिए कभी भी अपने दुखों के लिए दूसरों को दायी मत बनाओ, इसने हमारा अपमान किया, इसने हमारा ऐसा किया, इसने हमारा सर्वस्व ले लिया, इसने हमें पीटा, जो परमार्थिक व्यक्ति हैं इस रूप में समझ करके शांत रह करके भगवान का भजन करें हर हालत में, तब तो ये व्यक्ति भजन कर सकेगा, अन्यथा वो कभी कर नहीं सकता है। इसलिए ये सब चीज़ों को लाने की जरूरत है हमें, तभी ये सब चीज़ें आने पर काय मन वाक्य इत्यादि के जो 6 प्रकार के जो वेद हैं उनका हम दमन, भगवान के नाम के द्वारा ही भक्ति के विचारों से ही दमन हो सकता है। और जो बतलाया कल परसों बतलाया था, अत्याहार प्रयाहार सस्य बतलाया था, भक्ति के प्रतिकूल जितने भी चीज़ें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, और भक्ति के अनुकूल जो जितने हैं उसको ग्रहण करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, वैष्णव को यथायोग्य सम्मान देना पड़ेगा, नाम में रुचि नहीं होने पर भी, श्रवण में रुचि नहीं होने पर भी पुनः पुनः श्रवण और कीर्तन करना है। गुरु जी ने कहा 1,00,000 नाम करना है, हमारी रुचि चली गई, हमको जैसे तैसे करना है यदि भगवान को पाना है, इन नियमों को भी पालन करना पड़ेगा। इसलिए खूब सावधानी के साथ में भक्ति के जितने भी अंग हैं जो हमारे लिए भजन के लिए अनुकूल हैं उनको जरूर पालन करना चाहिए। तब कहते हैं एक श्लोक में सब उपदेशों का सार बतलाते हुए, इसकी भी व्याख्या हमने की थी, तन्नाम रूप चरितादि सुकृतनानुक्रमेण रसनामनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नये अखिलाम इत्युक्तः। ब्रज में रहेंगे किंतु कैसे ब्रज में रहेंगे, वैसे रसिक तत्वज्ञ वैष्णव जो हमारे ऊपर अति स्नेहशील हैं, ऐसे वैष्णव के अनुगत्य में रह करके, अनुगत्य किसको कहते हैं, अनुगत्य माने उनके साथ में रहेंगे, उनका प्रसाद खाएंगे, ये तो अनुगत्य है ना, नहीं जैसा वो चाहते हैं, उनकी आंतरिक इच्छा है वैसे हम चलें, उनके आचार उनके व्यवहार उनके भक्ति के विचार, भक्ति के आचरण, जिस रूप में हम अधिकारी हैं उस रूप में उसको हम ग्रहण करेंगे भाई, और नहीं करेंगे तो भजन नहीं। ये अनुगत्य का हम करेंगे अपने इच्छा से, किंतु रहेंगे उनके साथ में तो ऐसे में उनके आचार विचार व्यवहार को हम सब विषय में, ये है अनुगत्य। ऐसे वैष्णव के अनुगत्य में वृंदावन में हम रहेंगे, और अपने भावानुकूल में हम लोग श्रवण और कीर्तन स्मरण इत्यादि का भक्ति के जो अंग हैं उसका, जो जिस स्टेज में है जिस अधिकार में है अपने अधिकार के अनुरूप में करें। दूसरी कोई अभिलाषा न हृदय में आने पाए, कोई भी अभिलाषा भक्ति के अतिरिक्त। मान लिया कि एक आदमी निरक्षर है, निरक्षर है तो वो भागवत नहीं पढ़ सकता, व्याकरण नहीं जानता, या अच्छा तब वो उसको भक्ति कैसे होगी जो भागवत में है, नहीं हो सकता है। इसीलिए श्रवण का है, श्रवण के द्वारा ऐसा हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि पढ़ने लिखने पर भी वो चीज ना आए भाव, पढ़ने लिखने से वो भाव नहीं आएंगे भक्ति के, वो आएगा कैसे, जिसके ऊपर में गुरु वैष्णव की कृपा है वैसा सेवा है ऐसे आएगी भाई। पढ़ने लिखने से तो हम देखते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों आदमी पढ़े लिखे हैं, इसलिए वैसे नहीं आएगा, बल्कि उसके द्वारा यदि घर से हम पढ़ लिख करके नहीं आए हैं और वैष्णव का अनुगत्य छोड़ करके यदि केवल पढ़ने लिखने में हम लगा दें, सेवा को छोड़ करके केवल व्याकरण रटने में लगा दिया तो कुछ सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो कर्म है ना। इसलिए वो कर्म के द्वारा निष्कर्मम अपि अच्युत भाव वर्जितम नशोवते ज्ञानम अलम्बित, वो कर्म है पढ़ना उसके द्वारा नहीं होगा, भक्ति साक्षात नहीं चलनी चाहिए, सहायक के लिए भक्ति के लिए हम पढ़ रहे हैं, ऐसा यदि हो और सचमुच में ऐसा हो तो हो सकता, नहीं तो फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं इतने अधिकांश लोग हैं हम लोग हैं तो हम लोगों को भक्ति कभी होती होगी नहीं। गाय के अंदर में पशुओं के अंदर में जो प्रेम है कि नहीं है अपने बच्चों को, वो स्वाभाविक है पढ़ने लिखने की जरूरत है। वैसे हमारे अंदर में जो भावना है वो प्रेम की है, वो श्रवण के द्वारा हम उसको उन्नत कर सकते, ये किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते। इसलिए श्रवण हम करते रहेंगे, धीरे धीरे हरिनाम करेंगे, मंत्र के जप के बल ले, जैसे एक ग्वारिया था कौन सा गोप कुमार, वो तो भैंस के स्कूल में गया और गाय के स्कूल में जाता था, गाय चराता था ना? और क्या करता था, स्कूल कॉलेज में तो कभी गया नहीं, व्याकरण इत्यादि तो पढ़ा नहीं गोप कुमार। गुरु जी ने कह दिया जैसे यही मंत्र जपो गोपाल, उसने और कुछ किया, इसलिए हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत सहारा है उपाख्यान। देखो जो पढ़ा लिखा नहीं विद्वान नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई कुछ नहीं, और देखो जैसे गुरु के संपर्क में आकर के मंत्र जपने लगा सत्ता से, और वो कहाँ का कहाँ एकदम गोलोक वृंदावन में एकदम पहुंच गया। इसलिए हमारी भी वैसे ही भावना, इसलिए तन नाम रूप चरितादि खूब श्रद्धा के साथ में, नाम के प्रति, मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति, धाम के प्रति, और मंत्र तो कहा वृंदावन के प्रति, नवद्वीप के प्रति, कृष्ण के प्रति, राधा जी के प्रति, महाप्रभु के प्रति हमारा यह प्रेम श्रद्धा सब तरह से हटा करके उन्हीं के कृपा के ऊपर में हम निर्भर बस इतना। इसलिए उसके मन शिक्षा के पहले श्लोक में और एकादश शिक्षा में भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने बतलाया, स्वनियम दशकम भी उन्होंने ऐसा किया। इसलिए इसी पर हम लोग जोड़ देंगे, विद्या एक खूब अच्छी बात है, उसको भी भक्ति में लगा है। और यदि विद्या नहीं है तो जो कुछ है गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, भगवान की सेवा में लगाएंगे और मंत्र जप और हरिनाम में लगाएंगे, जरूर भक्ति होगी निश्चित। इसलिए इन्होंने बताया कि वृंदावन में हम रहेंगे। यदि वृंदावन किसी प्रकार से नहीं रह सके, अनुकूल वातावरण नहीं हमारा है, हम नहीं रह सकते, तो जहाँ भी रहेंगे वैष्णवों के अनुगत्य में, ऐसे वैष्णवों का अनुगत्य जरूर चाहिए और मन से के द्वारा वृंदावन में हम रहेंगे तत्व हो सकता है। इसलिए तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी, ऐसे भगवान के प्रति अनुरागी जन हैं उनके अनुगत्य में रह करके, अर्थात वो जैसा चाहते हैं ना, हमको पुतली की भांति जैसा नचाना चाहते हैं वो नचाते, हम उनके हो गए। ऐसा अपना आप स्वतंत्रता तनिक भी मत रखो, किंतु ये होगा कुछ उन्नत अवस्था में, साधारण स्थिति में नहीं भी, किंतु हम लोग ऐसे ही चेष्टा करेंगे, हम उनके इच्छा अनुसार नहीं चल सकते, इसके बाद में भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे। जो ऐसा समय लेकर के भजन करता है इस रूप में, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, मठ में है, आश्रम में है, जहाँ इच्छा चल दिया, जिसके साथ में चल दिया, विषयी लोगों के साथ में जहाँ तहाँ घूम रहे हैं, तो उससे तो अच्छा था कि हम गृह में ही रहें, अपने वृत्तियों पर अंकुश नहीं कर सकते, भजन ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा रह करके। इसलिए अपने विचारों पर, अपने मन पर अंकुश रखो भाई, भजन करो, उनके अनुगत्य में चलो। यदि तुम में विचार करने की क्षमता नहीं है तो उनसे अंततः तो परामर्श लो, जो मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ क्या कर रहा हूँ, इसके लिए तो परामर्श करना चाहिए। और नहीं तो स्वतंत्र हो करके चलोगे, वो छोड़ देंगे, तुम जैसा होगा तुम भरोगे। इसलिए इस प्रकार से रह करके यदि कोई भजन करेगा 24 घंटा, वही एकमात्र उद्देश्य है, कैसे मैं उस चीज को, उद्देश्य को प्राप्त कर सकूं, बस एक, तब तो वो भजन कर सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्णाम रूप गुण लीला सुकीर्तन। सुकीर्तन क्यों कर दिया, कीर्तन नहीं कहा, सुकीर्तन मैंने सुस्त रूप से नियम पूर्वक जैसा उन्होंने लिखा है उस रूप में तुम भजन करो इन सब का, और अपने भावों के अनुकूल, भावमयी, भाव संबंधी, भावानुकूल इत्यादि को। अनुस्मृति क्रमे जीवा मन संजोग संयोजन, अनुस्मृति सब समय भगवान की लीला कथाओं का चिंतन करो, करते 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 मन को और जीवा का दोनों को उसमें लगा लो। जीवा बड़ी तेज है, ये भजन में सबसे बाधक है, और मन, ये दो यदि कंट्रोल हो जाए तो भजन सहज रूप में हो जाएगा। अधिकांश रूप में लोगों का मन कंट्रोल नहीं रहता, जीवा भी कंट्रोल नहीं। गुरु जी ने कहा आजकल तुम बड़े तेज हो गए, हो गए हैं, मैया बाप को उत्तर दे, हाँ हाँ हो गए, अच्छा उत्तर तो कुछ नहीं दिया, किंतु ये इसमें मूड क्या है, उसका चैलेंजिंग मूड है, कुछ नहीं कहता है, किसी ने डांटा गुरु जी ने तो उसका मुख एकदम लाल हो गया, ऐसे हो गया, इसका मूड क्या है। इसलिए ये सब नहीं मान करके उसको सह लेना चाहिए, ये हमारे लिए अमृत है, ये सब अनुगत्य के सब। इसलिए आप सब लोगों में भगवान कृपा करें, गुरु कृपा करें, जो ऐसी भावना आए जैसे कि हम लोग भजन कर सकें। इन छोटी छोटी बातों के लिए भजन से हम विचलित हो जाते हैं, ये सब भजन के रहस्य हैं। इसके बाद में जब ये सब हो जाएगा, इसके बाद में तब लोभ उत्पन्न हो सकता है भगवान की कथाओं को सुन करके, मैं भी ऐसे ही सेवा करता, और होने के बाद में तब ही उनके अनुगत में भजन होते होते कृष्ण वास अनुरागी जन दासी बन, कुंज में हमारा वास हो, वैसे अनुरागी जनों की दासी होकर के, आतत रूप मंजरी इत्यादि की दासी होकर के, अष्टकाल भजी लीला मजिया 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 मजिया, ये बंगला का शब्द है, मजिया मजिया मने भाव में डूब करके करें, सब समय भाव में डूबे रहे और करें, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, मठा आया कहाँ से आया, सरसात में हुआ कहाँ से लाया,
सखी स्थल
बस भाव में उम्मत है, बस लठिया लेकर के मारे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं गोपी 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 निमाई पंडित। किसी ने कहा यारे गोपी गोपी क्या कर रहा है, कृष्ण कृष्ण नहीं कर सकता? और ये ठीक, ये भी पक्ष है ठीक। बस लठिया लेकर के जो हाथ में था और भाव आवेश में उसको मारे, वो लोग समझ नहीं सकते। इसी प्रकार से जो कुछ भी लीला, एक वृंदावन में कोई हाथी बाबा थे, हमने सुना है बहुत पहले, आज से करीब 50-60 वर्ष पहले जब मैं यहाँ था, तो जब मैं प्रारंभ में आया था सुना था, तो वो सुना था जैसे एक माँ चुन करके ले आए, फूल बेली चमेली जूई सब इधर उधर से ले आए, उन्होंने माला बनाया। अब माला कैसी बनी है वो ये नहीं, माला बन गई है, माला लेकर के हाथों में ऐसे खड़े रहे, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और ऐसे ना जाने कितने घंटों पर खड़े रहे। ये सब भावावेश है। इसलिए जब तक इस प्रकार से भजन हमारा नहीं होगा, खाने में आवेश रहेगा, लड़ने में आवेश रहेगा, हमारी आकांक्षाओं के लिए आवेश रहेगा, किंतु भजन में आवेश नहीं रहने से कैसे भजन होगा। इसलिए ऐसे सब समय रहना चाहिए जो भजन में आवेश हो और देह गेह सब कुछ भूल जाओ। भगवान को ऐसा नहीं होगा तो भजन ऐसा नहीं होगा। फिर कुंज की तो बात बहुत दूर है, बहुत। इसके लिए ऐसे भावों के लिए करो क्या, रूप गोस्वामी जी भक्ति स्वामी सिंधु में लिखते हैं, उसको थोड़ा सा चिंतन करो। कृष्णम स्मरण जनम चाष्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत्त कथारताश्चासौ कुर्यात वासम ब्रजे सदा। पहला है ब्रज में रहो। ब्रज में कौन रहेगा, कौन रहेगा ब्रज में, जिसको कोई चिंता है ही नहीं है, आगे न पीछे, न आगे नाथ न पीछे पगह, कुछ भी नहीं, ऐसे लोग रह सकते, दूसरा नहीं रह सकता। जिसको चिंता है, जैसे हमारा घर बार या और सब कुछ है, आश्रम है, ये गड़बड़ हो जाएगा तो वृंदावन में कुछ ना कुछ चिंताएं ऐसी हैं जैसे हम नहीं रह सकते। वहाँ तो वही रह सकता है जिसको कल क्या खाएंगे, शाम को खाएंगे क्या, इसकी भी चिंता नहीं है, कपड़े हैं कि नहीं है, कुछ भी नहीं, वो लोग सब वृंदावन में वास करते हैं। और वैभव को लेकर के हम रहेंगे वो उसमें होना असंभव है भाई, उस रूप का वास होना चाहिए। जैसे रूप और सनातन जी रघुनाथ दास गोस्वामी ने ब्रज में वास किया, भूगर्भ गोस्वामी ने वास किया, ऐसे वास करने के लिए कहते हैं प्रेम के लिए, वो जरूरी है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कुर्यात वासम ब्रजे सदा, ब्रज में तू वास करो। और कैसे वास करो, ऊपर के श्लोक में रूप गोस्वामी ने बतलाया, वैष्णव के रसिक वैष्णव तत्त्व वैष्णव के अनुगत करो और उनके भावों का अनुगमन करो, उनकी क्रियाओं का, कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं, क्या करते हैं, उनके व्यवहार दूसरों के प्रति क्या है, कैसे वो बोलते हैं, समाधिस्थ का भाषा, क्या है समाधिस्थ का भाषा, समाधिस्थ के सब स्थित किमाशेत किम ब्रजेत, ये सबको लाना चाहिए। इस सब में कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, इस सब में उनके साथ रहने पर लक्ष्य करके और हम अनुगत कर सकते, ये सब चीज। ऐसे नहीं सुन लिया कान से निकाल दिया और किया कुछ, करेंगे अपने मन की डंडा वहीं रहेगा। हम पंचों की बात हमारे सिर पर है, जो कुछ आप लोग फैसला कर लेंगे वो मान लूंगा, किंतु डंडा वहीं रहेगा जहां पर भी है, समझा इसका। दो भाइयों में लड़ाई लग गई एक इंच जमीन के लिए और मारा मारी होने लगी, गांव वालों पंच लोग आए, काजे भाई तुम लोग ऐसा मत करो, हम लोग स्थिर कर देते हैं कि कहां तक तुम्हारा क्या है, ठीक है। तो उस राज्य पंचों की बात हमारे सिर पर है, किंतु डंडा जहां है वहीं रहेगा, तो हुआ क्या, हम सबकी बात मानेंगे, सबकी बात मान लिया, किंतु करेंगे वही जो हम चाहते हैं, तो फिर इसे साधन भजन भाई नहीं होगा। ब्रज में रहेंगे, कैसे रहेंगे, इस तरह से रहेंगे, तत्त कथा रतस चासौ, कृष्ण को स्मरण करेंगे और साथ साथ में जनन चश्य कृष्ण के जो अपने जन हैं उनका स्मरण। जैसे हमको सख्त भाव हमको में रुचि हुई लोग हुआ सब। अच्छा कृष्ण का स्मरण कैसे करेंगे, बड़े श्याम सुंदर हैं, उम्र अभी 8-9 वर्ष की है, गोप वेश है, मैया ने उनको गोप वेश में सजाया, साथ में एक लौकुटी होनी चाहिए, कमरी भी हो जाए तो हर्ज नहीं, लौकुटी और कमरी सब कुछ दे, कमरी छाया के लिए, वर्षा होगी ना तो छाता तो है नहीं उसको उड़ दे, लौकुटी की इसलिए पशुओं को चराने के लिए और अपने शरीर की रक्षा के, और बच्चों के साथ में बड़े बड़ा प्रेम रखने वाले। कभी कभी बच्चे यदि थक जाते हैं ना कहे गायों को हाथ ले आओ, और बच्चे सब ले आए ना तो कहे थक गया ना तो उसको गोदी में बैठा कर उसके पैर भी दबा दे, और कभी अपने थक जाएंगे तो वो उनका पैर दबा दे, बड़ा सौहृद भाव उनमें है, कोई भी दुराव नहीं है, परस्पर जूठा भी खा लेते हैं, सख रस के कृष्ण का वो ध्यान करें और उनकी लीलाओं का वर्णन करें, किस प्रकार से गोचारण करते हैं, क्या क्या करते हैं, इन सब लीलाओं का स्मरण करे, स्मरण करे और कृष्ण का स्मरण करे, और क्या करे, जनन चस्य उसमें से जैसे भक्त हैं सख रस के, जैसे सिद्धांत, सिद्धांत जी कौन है, राधा जी के भैया, कृष्ण से बड़ी उनकी मित्रता है, एक सखा और सखा है जो कृष्ण से उम्र में छोटे, ये कृष्ण के बराबर वाले हैं, और कुछ उनमें दास्य भाव युक्त संख्या है। सुबल कैसे हैं, सुबल थे अत्यंत अनुरागी जन हैं और कृष्ण से किसी भी विषय में दुराव नहीं, सिद्धांत से कुछ दुराव हो सकता है, कुछ छिपा लें, राधा विषय यदि कोई बात है ना तो उनको छिपाएंगे, किंतु सुबल से अपने हृदय की जितनी बातें हैं वो सब उनसे कह देंगे, दोनों गलबैया दे करके सो जाएंगे और उसी समय मंत्रणा होगी जी कैसे क्या होगा, तो जिसको जिस प्रति होता है ऐसे भक्तों का स्मरण करना। कभी कभी सुदाम श्रीदाम सुबल जी कभी कभी स्त्री वेश सज जाता है और बन करके और राधा जी के पास में बेखट के चला जाए, कोई नहीं समझ सकता ये कौन है, इस प्रकार से काम बना लेता है, तो उनका उनको स्मरण करेंगे जो सख्त भाव, उसी प्रकार से जो जो जीव रस में है उसी प्रकार से उनकी चिंता करेगा, किसकी, उस कृष्ण की
और सज्जनों
और उस जनों, जैसे मधुर रस में यदि किसी को चिंता करना है कृष्ण के लिए तो उनके दूसरे कृष्ण होंगे, लौकुटी की कोई जरूरत नहीं है,
वंशी
रहेगी, लौकुटी रवि शक्ति है किंतु वंशी रहनी चाहिए और अत्यंत मधुर उनके जो गुण हैं वो सब रसिकता इसमें अधिक होनी चाहिए, विदग्धता होगी, गोपियों के मन की भाव को जानने वाला होना चाहिए और उसको रिझाने वाला होना चाहिए, धीर ललित नायक होना चाहिए, और सब जो गुण है वो कृष्ण का चिंतन करेगा और उनके कथाओं का लीलाओं का स्मरण करेगा, उन लोगों के लिए रास लीला वो गोपी गीत भ्रमर गीत बेनु गीत इत्यादि का स्मरण करना चाहिए उन लोगों के, और जनु का रुक्मंजरी पति रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्त विनोद ठाकुर इत्यादि ये लोग, और इनके सिद्ध स्वरूप का राधा जी का जो स्मरण है उतना सहायक नहीं होगा जितना की होगा, वो लोग दोनों इष्ट देव के रूप में राधा कृष्ण रहेंगे, ललिता विशाखा भी इष्ट देव के रूप में रहेंगे, स्मरण होगा इनकी जो सेवाएं हैं जो करती हैं उन सब का स्मरण, इनकी सेवाएं हमारे लिए अनुकूल। उनकी सेवाएं हमारे लिए अनुकूल नहीं होगी। राधा जी जो सेवा कृष्ण की करती हैं उसे हमारी अनुकूलता नहीं, इसलिए अपने भावों के अनुकूल जो है उनको स्मरण। और साधक जी में रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी की, और अभी जो हैं जो रागानुगा भजन करने वाले हैं उनके व्यवहार में उनके साथ में रह करके भजन करना चाहिए, उनके भावों को ग्रहण करने की चेष्टा करना चाहिए। इसलिए कहते हैं तत्त कथा रतश्चास, दिन रात उसी की चिंता में लौलिन, कब खाया कब पिया कब क्या हुआ इसकी चिंता भी। ऐसे व्यक्ति उस चीज को पाएंगे जो चीज सर्वोत्तम है, उसका मूल्य भी बहुत अधिक है। एक कांच की गोली का दाम 1 रुपया हो सकता है, 8 आना 4, 1 कोटी कौड़ी का दाम हो सकता है कि 1 पैसे में मिल जाए, किंतु कोहिनूर हीरा 1 पैसे में नहीं मिलेगा, उसका मूल्य भी ऐसा होगा। चिंतामणि उससे भी अधिक, संजीवनी जो चीज है वो और भी अधिक, तो उसका मूल्य भी उतना अधिक होगा। तो इसका साधन भी वैसा ही दुर्लभ है, जैसे वो वस्तु है ऐसे उसका साधन भी है। इसलिए ये साधन भी सर्वोत्तम साधन है और सबके लिए ऐसा सुलभ नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए है जो सर्वस्व त्याग करके एकमात्र उन्हीं की चिंता करते हैं। इसलिए सब समय उनकी कथा में लीला, कब कल क्या खाएंगे, हमारा कपड़ा गंदा हो गया, हमारी घड़ी तो है नहीं, ये सब चिंता रहेगा तब ये सब चीज नहीं है। दिन रात उन्हीं की चिंताओं में रहे। अभी हम अपने रोग की चिंता करेंगे ना भगवान की चिंता करेंगे, उन लोगों को कोई रोग ही नहीं होता, उसको स्थिति को पार कर गए, न शोक है न रोग है, क्योंकि ये तो साधन भक्ति के समय में ही ये सब चीजें भाव भक्त होने के पहले ही साधन स्थिति में ही जितने प्रकार के क्लेश हैं और हो सकते हैं सब क्लेश उनके दूर हो जाते हैं। इसलिए क्लेश तो होता नहीं, न शारीरिक न मानसिक, इससे भी मुक्त तो हो ही जाते हैं। मुक्त होने के बाद में तब ऐसा व्यक्ति वो दिन रात उनकी कथाओं में डूब जाता है। आज यही कह रहे कितना बजा,
7:30
आज यही तक रहे, कल फिर हम लोग इसका भजन करने वाले साधकों को कैसे भजन करना चाहिए उसका सार रूप गोस्वामी ने जो बतलाया है उसको कल हमने बतलाया तन नाम रूप चरित आदि द्वारा। उसका सार यही है, निरंतर भगवान नाम कीर्तन करे, उसमें भी अपने स्वाभिष्टमय भाव के अनुरूप जो भगवान के नाम हो, उनकी जो लीलाएं हों, उनके जो चरित्र हों, उनके जो परिकर हों, उनके अनुकूल इस सबको ग्रहण करें, वैसा ही कीर्तन जिह्वा के द्वारा और वैसे ही जिह्वा के द्वारा कीर्तन करें और वैसे ही भावों का स्मरण करते हुए चले। वृंदावन में रहे तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में रहे और तदानुरागी जन जनानुगामी उनके अनुगत रह करके उनके आचार विचार व्यवहार भजन प्रणाली सबको अनुगमन करें, और ऐसे करते हुए भजन करते हुए अपना जीवन निर्वाह करें, यही समस्त उपदेशों में सार उपदेश है। 1 मिनट भी इधर उधर न जाए, ऐसा व्यक्ति वही कर सकता है जो सर्वनिरपेक्ष हो, अकिंचन हो, शरीर से भी स्वस्थ हो, मन से भी स्वस्थ हो, सब गुण उसमें हो, तब ऐसा। ऐसे बिना भगवान की विशेष कृपा के ऐसा अकिंचन निष्किंचन भगवान के ऊपर ही अपने सब कुछ निर्भर करने वाला व्यक्ति भजन करने वाले बिरले मिलेंगे। ऐसा ही होने की चेष्टा करनी चाहिए, अंततः लक्ष्य रखना चाहिए कि ऐसा ही हम भजन करें। फिर कल ये भी बतलाया, कृष्ण को स्मरण करो, अपने भाव अनुकूल कृष्ण को और उनके सेवकों को, नित्य परिकरों को जो अपने भाव के सन्निकट हों, अनुकूल हों, उनका स्मरण करें। निज समीहितम माने अपने भावानुकूल, हमारे भाव के जो निकट है, ऐसे ही कृष्ण को। कृष्ण यदि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हैं कृष्ण, और वो जरासंध से लड़ रहे हैं, तो हमारे भाव के अनुकूल होंगे कि नहीं? क्या प्रजानंद बतलाओ, होगा ना? क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो ऐसे ही अपने भावों के अनुकूल होना चाहिए, होगा कि नहीं? शंख चक्र गदाधारी जो कृष्ण हैं, हमारे भाव के अनुकूल होंगे तो नहीं? जो शखरस के कृष्ण हैं वो हमारे भावों के अनुकूल होंगे कि नहीं? तो भी नहीं। गोदी में खेलते हुए कृष्ण, लड्डू लिए हुए लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे भाव के अनुकूल होंगे कि नहीं? मथुरा में कंस को मारते हुए कृष्ण हमारे भाव के अनुकूल होंगे कि नहीं? पार्थ सारथी कृष्ण हमारे भाव के अनुकूल होंगे कि नहीं? ये सब विचार करके अपने भावों के अनुकूल निकट जो कृष्ण हो उपयोगी, और उनके जनों को नित्य स्मरण करते हुए वैसे ही भाव को ग्रहण करते हुए भजन करना चाहिए। इस प्रकार से ब्रज में रहो कि मैं ब्रज का रहने वाला हूँ। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्या जाता अनुरागो उच्च चित्त हसप्तो रोदति रोति गायत उन्माद नृत्यति लोक बाह्य। ये नारद ऋषि द्वारका में गए हैं और वसुदेव जी यज्ञ करा रहे थे, उनको देखते ही यज्ञ बंद कर दिया गया। कहे यज्ञ का फल आ गया। यज्ञ का फल क्या है? साधु संतों का दर्शन, इसलिए यज्ञ का फल आ गया। तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपने पुत्र के लिए, पुत्र पाने के लिए हमने तपस्या की थी, हमने मुक्ति के लिए कुछ नहीं की, इसलिए बतलाई कि हमको मुक्ति कैसे मिले। तो नारद जी ने विचार किया, कहाँ हमसे ये उन्नत और ऐसे प्रश्न कर रहे ज्ञानियों जैसे। उन्होंने सोचा यह कि कोई भी व्यक्ति आता है, यदि विद्वान मैं हूँ ऐसा कह करके यदि प्रश्न करता है तो प्रश्न का उत्तर देने वाला उत्तर नहीं देगा। उसके पास उत्तर लेने के लिए प्रणिप्रात, परिप्रश्न और सेवा चाहिए। मैं बहुत दीनहीन हूँ, हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाए यदि मैं योग्य हूँ। ऐसा प्रश्न में कोई हमारा प्रश्न का उत्तर दीजिए तो ऐसा नहीं, यदि मैं क्वालिफाइड हूँ, यदि मैं योग्य हूँ तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा कीजिए या उत्तर दिया जाए, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। चैलेंजिंग मूड में नहीं होना चाहिए, या ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं इसलिए परीक्षा के रूप में नहीं, सेवा वृत्ति के साथ में उनसे ये प्रश्न किया जाए। तो उस समय में सोच रहे हैं जैसे ये हमको उसका रहे हैं, केवल उसका रहे हैं माने क्या, उत्साहित कर रहे हैं कोई हरि कथा कहने के लिए बस। जैसे हमारे गुरु जी आते थे यहाँ या कहीं भी रहते थे, मैं जानता था उनका स्वभाव। एक आदमी एक घंटा बैठा रहा, उसे कोई बातचीत नहीं करें, वो अपने भाव में, जब तक कोई कुछ पूछेगा नहीं तब तक कुछ नहीं बोले, पूछने पर भी सहज ही नहीं बोले, बहुत गंभीर रहते थे। तो देखा जैसे मथुरा के कुछ लोग आए हुए हैं, वकीलों के लोग या और दूसरे लोग बड़े अच्छे आदमी, तो मैं जानबूझ करके कोई प्रश्न कर देता, ये प्रश्न उनके तरफ से अपने तरफ से नहीं, कोई प्रश्न अनबूझ अज्ञानी जैसा प्रश्न करता। गुरु जी समझ जाते थे ये अपने लिए नहीं, इन लोगों के लिए ये प्रश्न कर रहा है, तब फिर वो प्रश्न का उत्तर देंगे। तब फिर वो लोग प्रश्न पर प्रश्न करते, फिर धीरे 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 जम जाते। ऐसे हरि कथा, ऐसे ही उन्होंने पूछा, पुत्र के लिए किया, पुत्र के लिए किया, मुक्ति के लिए किया, इन दोनों में इम्पोर्टेंट कौन है, प्रधान क्या चीज़ है, कौन अच्छी चीज़ है, बोलो तो। कहाँ पुत्र प्रेम, कृष्ण को ही अपना पुत्र बना करके और उसको पुत्र को आए ले आए कृष्ण को, बिना प्रेम के तो उनको कोई पा ही नहीं सकता है पुत्र के, तो उनको मुक्ति के लाख गुना उन्नत उनको प्रेम हुआ है ऊंचा, और उस प्रेम के द्वारा कृष्ण उसके पुत्र के रूप में उनके घर में पधारे। भला मुक्ति की क्या जरूरत है,
भजन करने वाले तो हाँ
उनके भक्तों की, उनके भक्तों की पुत्र की बात छोड़ दो, उनके पुत्र तो भगवान की बात छोड़ दो, उनका जो भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हीं जो साधक सिद्ध नहीं, वो भी साधक इस जगत में रहने वाला है जो साधक, उसके लिए मुक्ति उनके घर में पानी भरती है और रस्सी बनाती है, जेवर
जेवर काटती है।
फिर उस मुक्ति की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, मुक्ति बहुत तुच्छ है उस भक्ति के साथ। तो अभी ऐसा प्रश्न किए हैं कि ये हमको अनुभूज समझ करके भगवान की कथाएँ करें, और इसीलिए वो कह रहे हैं, सुजोग मिल गया कहने के लिए वो कह रहे हैं, तो उनके लिए नहीं कह रहे। वहाँ पर और जो लोग थे या भावी पीढ़ी में जो होने वाले हैं संसार में, उन लोगों के लिए ये बतला रहे हैं। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्या जातानुरागो दितचित्त उच्चे हसत कठोरो सखिरोति गायत् उन्मादवत्नि गति लोक बाह्यम्। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्या जिनका व्रत ही ऐसा है, नारद जी का एवं व्रत, एवं व्रत माने जिनका व्रत ही ऐसा है, व्रत माने स्थिर, उनकी ऐसे ही व्रत उन्होंने संकल्प कर रखा है। जैसे एकादशी का व्रत और कोई व्रत धारण कर, माने संकल्प करते हैं कि ये हमको करना है, आज हम निर्जला एकादशी व्रत करेंगे और निरंतर 24 घंटे सोएंगे नहीं, भगवान का स्मरण और कीर्तन करेंगे, ये व्रत, ऐसे ये इनका व्रत है क्या, स्वप्रिय नाम कृत्या जातानुरागो दिच्छितो, स्वप्रिय नाम कृत्या, स्वप्रिय माने अपने भावों के अनुरूप, अनुकूल भी नहीं, भावों के अनुसार जो है, अनुकूल तो त्याग दूर हो जाएगा, अनुकूल दूर हो जाएगा थोड़ा सा, हम अनुकूल नहीं चाहते, हम क्या चाहते, भाव के रूप में जैसा हवा मुझे, जैसे जैसे कल जो कीर्तन किया, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण भासी जसोदा तनय प्रसिद्ध श्री वल्लभी जीवन राज, इन नामों में इस सब प्रकार के नाम, उसमें से अपने भाव के अनुकूल में चुन लिया, ये कीर्तन पूरा किया, और कीर्तन करने के बाद में उसका धुआ जो होता है ना, धुआ धुआ माने एक लाइन जो होती है, तो वो कहने लगा
श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हर्षि यशोदा तनय प्रसीद
श्री बल्लभी जीवन राधिकेश तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें से उसको यही अच्छा लगा, उसके भाव के अनुरूप है, उसमें से यदि ये लगा हाशी जसोदा तब वो वही कहे हाशी जसोदा तनया प्रसीद हाशी जसोदा तनया प्रसीद हाशी जसोदा तनया प्रसीद। वो जैसे भाव के अनुरूप, जो जिसको जैसा भाव रहेगा वैसे अनुरूप उसको कीर्तन को करेगा। तो सप्रिय नाम कृत्य उसी का, जो जिस रूप में जिसके लिए अनुरूप जिसके भाव हैं, ये किसके लिए हो रहा है, जिनको लोभ हो गए उनके लिए, सब लोगों के लिए नहीं, जिनको अभी लोभ उत्पन्न नहीं हुआ उनके लिए कोई अपना प्रिय नाम नहीं है, उनके लिए जगन्नाथ ब्रह्मा पाता
परमात्मा
ईश्वर जगन्नाथ मुरारी कृष्ण राम नृसिंह कल्कि बावन ये सभी उनको एक समान जाते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है, ये विशेष लोगों के लिए है जो भावुक हैं रसिक हैं, जो कि नाम लेते ही एकदम बाह्य अनुभूति भी दूर हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए बहुत एडवांस